ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, बाबा की प्यारी प्यारी भूमि में इंदौर ओम प्रकाश भाई से कनेक्टेड सभी भाई बहनों का मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और आप सभी ऐसे महीने में यहाँ पर आए हैं, कौन सा महीना है? प्यारी मातेश्वरी जी का। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य जिन्होंने सुने हो हाथ खड़ा करो, याद है आपको? हैं, याद है कि नहीं, भूल गए? कई बच्चे पूछ रहे थे कल मेरे से साक्षात्कार के बारे में। आप देखते हैं कि मन में संकल्प करो, बाबा उसका जवाब दे देता है। दे दिया ना जवाब, साक्षात्कार क्या है, मम्मा ने कितने प्यार से समझाया है ना। तो अभी मैं देख रही थी इंदौर वाले कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा ने उनको बहुत बड़ा भाग्य भी दिया है, सौभाग्य भी दिया है, और क्या दिया है, बस भाग्य मिला कि नहीं? जो भाग्यशाली हो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो सौभाग्यशाली है वो थोड़े ही है कि सारे हैं? अच्छा, फिर उसका तीसरा कदम कौन सा है? हाँ, ये बोलो ना। अच्छा, आप त्रिमूर्ति में समाये हुए, बताऊं कैसे? पहला है भाग्यशाली। जब कोई बच्चा घर में जन्म लेता ना, अच्छे घर में, तो कहते राजा के पास, महाराजा के पास, रॉयल फैमिली में लेते ना, कहते ये भाग्य लेके आया, पूर्व जन्म का भाग्य लेके आया, है ना। आज के जमाने में कोई वीआईपी के पास जन्म लेंगे, कहेंगे भाग्यशाली है। तो बाबा के बने तो क्या हुआ? भाग्यशाली। फिर सौभाग्यशाली कैसे बने? बाबा के बने, ना मेहनत किया, ना ज्ञान योग पूरा सीखा। बाबा ने कहा मेरे लाडले बच्चे, नूरे रतन, विश्व परिवर्तक, पता नहीं कितने टाइटल्स दिए, हजारों लाखों टाइटल्स हैं, याद है ना? बाबा कितना रोज वरदान देते हैं, रोज टाइटल देते हैं, बिना मेहनत सौभाग्यशाली। स्कूल में बच्चा जाए, पढ़ेगा और मेहनत करेगा, और मेहनत करने के बाद जाके जज, बैरिस्टर या डॉक्टर बनेगा, या टीचर बनेगा, या बिजनेसमैन बने, या पढ़े बिल्कुल नहीं है, बिना पढ़े ही क्या बन गए, कितने टाइटल मिल गए हैं। जैसे मिलिट्री में देखो, किसी को एक टाइटल, एक मेडल होता है ना, एक मेडल होता है ना, किसको दो होता है, किसको तीन होता है, किसको चार होता है। आपके कितने मेडल हैं देखो जरा, कितने? डायरी खोलोगे या वैसे देखोगे? आपके मेडल हैं, बाबा ने कहा एंजल्स है, एंजल की ड्रेस लाइट होती है, वहां पर चमचमाते हुए सितारे हैं, ये सारे आपके टाइटल्स हैं, वरदान हैं, मेडल हैं, सौभाग्यशाली हो गए। फिर पद्मा पद्म भाग्यशाली कैसे हैं? पद्मा पद्म भाग्यशाली वो है जो बाप की श्रीमत पर कदम पे कदम रखते। हमारे पास एग्जाम्पल है दादियां, मम्मा का महीना चल रहा है, मम्मा के लिए एक आपको बात सुनाते हैं कि एक बार दीदी मनमोहिनी ने बाबा से पूछा, बाबा मम्मा भी इतना पुरुषार्थ करती है, मैं भी उतना पुरुषार्थ करती हूँ, लेकिन मम्मा आगे, हमारा नंबर पीछे क्यों? तो बाबा ने पता है क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा जब बाबा किसी भी बच्चे को शिक्षा देता है तो वो शिक्षा, मम्मा कहती थी बच्चे के लिए हो या ना हो, लेकिन वो शिक्षा मेरे लिए, मम्मा उस शिक्षा को अपने जीवन में अप्लाई कर देती थी। और तुम बच्चे क्या करते हो? बाबा ने देखो इसको ये शिक्षा दी, ये सुनता नहीं है, ये मानता नहीं है, करता नहीं है, करती नहीं है, तो तुम दूसरे की बात को कह के उसको छोड़ देते हो। तो ये कारण है कि मम्मा आगे गई। और मैं ये भी देख रही थी इंदौर वाले कितने न भाग्यशाली हैं, जो प्यारे बाबा ने, साकार बाबा ने भाई जी ओम प्रकाश भाई जी को इंदौर में भेजा, और जो ओम प्रकाश भाई जी ने मेहनत की और जो उन्होंने किया है, आप में से किसने ओम प्रकाश भाई को देखा? सबने देखा, वाह क्या कहना है, पालना ली है ना, क्या उन्होंने मेहनत की है हर फील्ड के अंदर। कोई भी नई इन्वेंशन हो, कोई भी सेवा हो, उसको इतना एक्यूरेट करते और नए नए प्लानिंग करते। तो ये भी इंदौर की जो धरनी है वो कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत उपजाऊ है ज्ञान के हिसाब से। और वहाँ पर जो बाबा का शुभ संकल्प था, तो उस शुभ संकल्प को हमारे ओम प्रकाश भाई जी ने बहुत ही प्यार से उसको साकार किया। आज यही कारण है कि इंदौर में कितने सेंटर्स हैं, कितने रिट्रीट सेंटर हैं, बड़े बड़े वो रिट्रीट सेंटर हैं जिसको देखने के लिए जाते हैं। तो हम तो कहेंगे बाबा हर एक के भाग्य, हर एक की जन्म पत्री को जानते हैं। तो बाबा ने ऐसे रतन को भेजा जो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी सेवा करेंगे। तो आपको तो बड़ा भाग्य ये भी मिला, बाबा की पालना, दादियों की पालना। इंदौर एक ऐसी स्थान है जहाँ पर कोई दादी ना गई हो तो ऐसा है ही नहीं, सब दादियाँ गई हैं, सब महारथी गए हैं, सब बड़े बड़े प्रोग्राम्स वहाँ चलते रहे हैं, काफ़ी इन्वेंशन और एक्यूरेट करते रहे हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए आज के दिन हम प्यारे बाबा को, दादियों को, एडवांस पार्टी को और आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी को मन ही मन, अपने मन की भावनाओं के द्वारा उनको थैंक्स देते हैं। और करतल ध्वनि से हम थैंक्स दे करके उनको बहुत ऐसा कहेंगे कि उन्होंने बाबा के द्वारा हमारा भाग्य चमकाया, हमें भाग्यशाली बनाया। तो आज के दिन तो बाबा, दादियाँ, एडवांस पार्टी वाले सब के सब आपको देख भी रहे हैं और वतन से गोल्डन पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। तो आज आपने देखा होगा कि प्यारे बाबा ने कितना अच्छा संदेश आप सबके लिए दिया, याद है कि नहीं है? याद है, हल्के रहना है ना, भारी तो नहीं होना। बाबा ने तो गिफ्ट दे ही दिया आपको, फिर क्या करना है। तो मैं दूसरी बात सोच रही थी, इंदौर वालों को क्या पड़ा था यहाँ भट्टी करने का? आपके पास इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर है, अभी रिट्रीट सेंटर बना है, रायपुर में है, फिर यहाँ क्यों आए भट्टी करने, क्यों आए बोलो? हैं क्या हैं? बाबा ने बुलाया, आप पे नहीं आए ना? देखो क्या है, वो भल कितने भी स्थान हैं बाबा ने बनाए हैं, ये बाबा का घर बहुत सिंपल, बहुत प्यारा, लेकिन बाबा ने और दादियों ने यहाँ पर बैठ करके इतनी गहन तपस्या की है। जब हैदराबाद सिंध से आए, पहले एक और स्थान था वो सूटेबल नहीं था, जब इस स्थान पर आए तो पूरा एक कच्चा स्थान था। अभी तो फर्श देखते हैं पक्का है, कमरे अच्छे हैं। बाबा के टाइम पर तो सब कमरे भी कुछ नहीं थे, हॉल थे, सब हॉल में जमीन पे सोते थे और बाबा जाते थे वहाँ चक्कर लगाने। बाबा कहते थे कोई भी, हम लोग आते थे ना अपने साथ साथ अपना बिस्तर लेके आते थे, बड़ा बड़ा बिस्तर, बाल्टी सब कुछ लेके आते थे, यहाँ तो कुछ नहीं होता था और जमीन पे सोते थे। बाबा चक्कर लगाते थे और ये गर्मी के दिन होते थे, ना पंखा ना कुछ, मच्छर भी होता था। बाबा शाम के टाइम पर क्या कराते थे, एक बहन एक भाई को ड्यूटी दिए हुए थे, जैसे बड़ी सी केवी होती है ना जिसमें सब्जी डालते, ऐसे होती थी, उसके अंदर वो कुछ मसाला और आग के वो कुछ होते थे वो लगता था और वो धुआं लगाते थे। फिर बाबा जाते थे कमरों में चक्कर लगाते थे। बाबा कहते थे मेरे पट राजा और पट रानियां बच्चे हैं। तो अभी आप कौन हो, पट राजा हो या पट रानी हो, कौन हो? अभी तो पलंग मिले हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना, बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, ऐसे ही बोलो, नशे से बोलो ना, हाँ बोलना चाहिए ना। ये थोड़ी बाबा ने इतना सुख दिया आपको, ऐसा सुख कोई देगा? अभी तो कुछ नहीं लाना है, ये सब बाबा की कमाल है, बाबा ने दादियों के द्वारा कराया सब कुछ बाबा। तो बाबा कहते हैं मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, भविष्य में होवनहार विश्व महाराजन और विश्व महारानी है, पर विश्व महाराज तो एक बनेगा, लेकिन बाबा ने कहा रॉयल फैमिली में आना है। फिर बाबा ने कहा ना माला, कई बार बच्चे कहते थे बाबा माला है, माला के दाने तो फिक्स हैं। बाबा कहते माला के दाने फिक्स तो हैं, पहले आप तैयार तो हो। तो एक माला अच्छी लगती है या माला के पास ढेर लड़िया वो अच्छा लगेगा? वो कौन सी माला अच्छी लगती है बताओ? लड़िया वाली ना। तो आप तैयार हो जाओ, लड़ियों वाली माला में बाबा डाल देंगे। फिर दूसरी बात, फिर बाबा कहते हैं अव्यक्त बाबा, देखो कई बच्चे नए नए आते ना, एक ही कंप्लेन करते, हमने बाबा को क्यों नहीं देखा, हमने दादी को क्यों नहीं देखा। आपने देखा कि नहीं देखा? बाबा को देखा जिसने, हाथ खड़ा करो। बाबा को देखा है? कहाँ देखा? साकार में बाबा को कहाँ देखा? देखा कहाँ देखा? भाई देखो ना, बाबा सामने और कहते नहीं देखा क्या? बाबा देखने और कहते बाबा को नहीं देखा, ऐसा होता है क्या? बाबा सामने है, बाबा कहते हैं मैं रोज बच्चों को देखता हूँ, रोज वतन में बुलाता हूँ। बाबा बच्चों को वतन में बुलाते हैं। फिर कई बच्चे उलाना देते हम देर से क्यों आए, बाबा कहते जो देर से है वो ज्यादा लक्की है। क्यों? अभी आप बाजार जाते शॉपिंग करने, वहां दुकान पे लिखा सेल है, और सेल में क्या होगा, जो चीज इतनी महंगी होगी वो 50, 100, 200 में मिल जाएगी। अब जो सेल की दुकान में जाएगा खरीदेगा तब तो उसको फायदा होगा, सेल को पढ़ लिया 50% डिस्काउंट, 50% कम है, वो पढ़ के आ गए और खरीदा नहीं तो क्या फायदा होगा? मिलेगा फायदा? नहीं मिलेगा ना। तो बाबा कहते जो लास्ट में आने वाले बच्चे हैं वो फास्ट जा सकते। जब मैराथन होती है, कोई बहुत पीछे होता है, कोई आगे दौड़ता है। खरगोश और कछुए की कहानी हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, निश्चिंत हो जाते हमने बहुत ज्ञान सीख लिया, बहुत चल लिया, आखिर क्या हुआ, खरगोश रह गया और कछुआ जीत गया। तो बाबा कहते लास्ट वाले फास्ट, लास्ट वाले लाडले हैं, दादियों के लाडले हैं। बाबा ने जो ज्ञान का माखन निकाला वो सारा का सारा ज्ञान आपको मिलता है। फिर दूसरी बात, जो मधुबन में हम आते हैं भट्ठी करने, तो बाबा वतन से बच्चों को देखते हैं और वतन से बाबा बच्चों को भरपूर करते। मैं आपको बताऊं, अभी सारे प्रोग्राम शांतिवन में होते हैं, सब भाई बहने आते हैं पांडव भवन में चारों धाम की यात्रा करने। चारों धाम की यात्रा कैसे करते हैं? चक्कर लगाए, बस चक्कर लगाया चल पड़े, लेकिन उसमें भी पुण्य का खाता जमा होता है। लेकिन भट्ठी में 5 दिन मिलता है, 5 दिन आप बाबा के कमरे में, बाबा के शांति स्तंभ पर, बाबा की झोपड़ी में, हिस्ट्री हॉल, सब जगह जाते हैं, तो कितने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती है, रियल स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, एक भाई आया यहाँ, उसकी कोई बहन आई हुई थी उससे मिलने के लिए। तो मैंने उसको कहा कि भाई जी आप रिसेप्शन में बैठो, हम बहन को बुला देते हैं। बोला मैं तो रिसेप्शन में नहीं बैठूंगा। मैं कहा क्यों? वो बाहर थल्ले पे बैठा हुआ था। कहा मैं तो यहाँ बैठूंगा। मैंने कहा भाई बाहर क्यों बैठे हो? कहते बहन जी मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ बैठने से ऐसी शक्ति की किरणें मेरे को आ रही, मिल रही है। बताओ ना, उसको ज्ञान है ना कुछ है, केवल आंगन में जो थल्ला है उस थल्ले पर वो बैठा है, उसको शक्ति की किरणें मिल रही। अब जो सन्यासियों के लिए बाबा बार बार मुरली में कहते हैं, कई धर्म सम्मेलन हुए यहाँ पर, इंदौर में भी हुए, यहाँ पर हुए, महात्मा सन्यासी जब भी आए हैं तो आके आंगन में खड़े हो जाते हैं, कहते कमाल है बाबा की, बाबा ने ऐसी शक्ति का भंडारा खोल के रखा है, ऐसी शक्ति मिलती है। अब बताओ वो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आते हैं, और आपको तो यहाँ पर कितना मौका मिलता है, कितना अच्छा भाग्य मिलता है। तो जो भट्ठी करने का मौका मिला है उस मौके में आपको पूरा पूरा लाभ लेना। और दूसरी बात आपको बताएं, जहां पर ये बैठे आप, ये बाबा के टाइम पर पहाड़ी थी, और ये बगीचा है ना, बाबा जब बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, बाबा मुरली क्लास में आते थे, पहले बगीचे में जाते थे, वहाँ से कभी कैसे फूल लेके आते थे। कभी बाबा अक्का फूल भी लाते थे, कभी गुलाब का फूल भी लाते थे। बाबा ने भी कल भी कहा ना, गुलाब का फूल बनना है, चेक करो, है ना। तो बाबा फूल ले आते थे और फिर वो फूल यहाँ पर बाबा ने अपने हाथ से अंगूर की बेल लगाई थी। वो अंगूर की बेल, इतना बड़ा अंगूर, उसके अंदर कोई बीज नहीं होता था, और वो अंगूर की बेल यहाँ पहाड़ी तक थी। और ये बेल जब मम्मा 24 जून को अभिव्यक्त हुई, तो बाबा ने वो बेल के वो जो अंगूर थे, बाबा हर साल जो है बच्चों को सेंटर पर भेजते थे। एक भाई तैयार होता था जो अंगूर की टोकरी लेकर के या आबू रोड से जयपुर, अजमेर और दिल्ली सारा कॉर्नर जाता। दूसरा होता था इधर महाराष्ट्र की तरफ, बॉम्बे महाराष्ट्र। तीसरा मध्य प्रदेश की तरफ जाता था, क्योंकि वहाँ बाबा के लाडले बच्चे, एक तरफ तो ओम प्रकाश भाई, दूसरे तरफ महेंद्र भाई बैठे हुए, ऐसे लाडले बच्चे। महेंद्र भाई भी तो बाबा के टाइम पर थे। बाबा उनको पता क्या के नाम था, महेंद्र। उस समय नेपाल में राजा था किंग महेंद्रा। बाबा कहते किंग महेंद्र आ गया, उसको बोलते थे। ओम प्रकाश भाई तो क्रिएटिव, उसका नाम महेंद्र वैसे ही नाम था। तो उस समय नेपाल में महाराजा था किंग महेंद्र, उसके बाद उसका बेटा आया किंग वीरेंद्र है। जब वीरेंद्र था तब तो मैं नेपाल में थी, उनसे भी हम कई बार मिले हैं। और वहाँ पर फिर ऐसे तो बाबा ऐसे उमंग दिलाते थे, फिर मध्य प्रदेश की तरफ, फिर पंजाब हरियाणा। उस समय हरियाणा नहीं था, पंजाब ही था। तो यहाँ से जाते दिल्ली को होते हुए फिर करनाल, अम्बाला और चंडीगढ़, फिर अमृतसर, बटाला, उधर चारों तरफ जाता था। ऐसे बाबा भेजते थे। तो अभी भी फिर 24 जून को वो अंगूर की बेल से अंगूर निकाल के मम्मा को विशेष भोग स्वीकार कराया जाता है। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो पहले बाबा के कमरे में आते थे, दादियों से मिलते थे, फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे। फिर एक बार बहुत से भाई बहने आए थे, अब बैठ ही नहीं सकते हिस्ट्री हॉल में, क्या करें। तो आंगन में बाबा का स्टेज बनाई गई थी और आंगन में भाई बहने बैठे, सुबह 11 बजे नाश्ता और दोपहर का भोजन, शाम को 4:30 से 6 के बीच में भोजन हो जाता था और 6 बजे बाबा की पधरामणि होती थी। फिर ये प्लान किया गया कि ये तो जगह तो चाहिए, अब कहाँ लें जगह। फिर उस समय ये पहाड़ी के ऊपर ये हॉल बनाया गया और ये 1973 में बनके तैयार हुआ। और 73 के बाद अव्यक्त बाप दादा यहाँ आते थे, अव्यक्त बाप दादा वहाँ बैठते थे और कोई सोफा नहीं था, और हम बाबा के बच्चे पट में बाबा के पास, जैसे ना माँ बाप परिवार फैमिली ऐसे ही होता था। तो बाबा से यहाँ पर मिलते थे, बहुत अच्छा दृश्य था। बड़ी दीदी के लिए एक कुर्सी होती थी, बड़ी दीदी उस कुर्सी पर बैठती थी। फिर ये अंगूर की बेल काट दी गई, लेकिन अभी भी है छोटी सी, और उसको दूसरी जगह भी लगाया है। कम से कम एक एक अंगूर तो मम्मा की याद का मिलता ही हम लोगों को, बाकी अंगूर मिलते हैं। 24 जून को मम्मा डे पे सबको फ्रूट का बड़ा पैकेट मिलता है, वैरायटी फ्रूट होता है, 10-12-14 प्रकार का होता है वो मिलता है, और 4 प्रकार की टोली भी मिलती है, तो मम्मा डे पे होता है। तो इस तरह से बाबा ने हर बच्चे की बहुत प्यार से पालना की है। तो यही मई जून का महीना था। आपको पता हो कि जब पहली प्रदर्शनी बॉम्बे में रमेश भाई, दादी प्रकाशमणि और निव्या भाई ने तैयार कराई थी, तो बाबा हमेशा कहते थे प्रोजेक्टर क्या है, रात को अंधेरे में दिखाते हैं, कोई देखता है या नहीं देखता पता थोड़ी पड़ता, कोई नया इन्वेंशन निकालो। तो नई इन्वेंशन निकाली थी प्रदर्शनी की, तो वो प्रदर्शनी भारत के विभिन्न स्थानों पर लगाई। तो बाबा को कहा कि बाबा आप बम्बई में आओ प्रदर्शनी देखने। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा, शिव बाबा से पूछना पड़ेगा। शिव बाबा जब तक डायरेक्शन नहीं दे, ब्रह्मा बाबा जा नहीं सकते थे। फिर शिव बाबा से पूछा, शिव बाबा ने कहा नहीं, इस बार बच्चा बॉम्बे नहीं आएगा। वैसे तो ब्रह्मा बाबा हर साल जाते थे, मम्मा भी जाती थी, दादियाँ भी जाते थे, ठंडी के टाइम पर सब बाबा जाते थे। ठंडी में बाबा कभी भी गर्म कपड़े नहीं डालते थे, एक छोटी सी पतली सी रजाई होती थी, आपने देखा होगा फोटो, बाबा कहते गोदरी में लाल आ गया, ऐसे बैठते थे, बाबा कहते गोदरी में लाल बैठा है, श्री बाबा की गोदी में लाल बैठा है। तो फिर बाबा ने कहा ये प्रदर्शनी यहाँ पर ले आओ। तो जो अपना आध्यात्मिक संग्रहालय है ना, उसके सामने अभी तो एक फैंसी शोरूम है, उस समय वो विश्राम भवन था और विश्राम भवन में प्रदर्शनी लगाई थी। साकार बाबा भी देखने गए थे और फिर बहुत लोग आए देखने, क्योंकि सनसेट पॉइंट उधर से है रास्ता, उसी रास्ते से क्रॉस करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कोई दूसरा स्थान होना चाहिए परमानेंट, जो यहाँ से टूरिस्ट निकलते देखे। फिर बाबा के शुभ संकल्प को साकार करने के लिए रमेश भाई और दादियों ने प्लान किया, जो आध्यात्मिक संग्रहालय है वो बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए और 17 जनवरी के उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, और वो रजिस्ट्रेशन हुई और वो स्थान बना। जब ये म्यूजियम बनाया गया, इस म्यूजियम से हम आपको बताएं, अभी भी बिल्कुल नया दिखाई देता है। पूरे भारत और विश्व के अंदर कई स्थानों पर सेंटर्स खुले, इसके देख करके गुजरात के इतने अच्छे अच्छे बच्चे निकले जिन्होंने गुजरात में और विदेश में सेंटर खोले, और अभी तक भी लगातार सेवा चलती ही रहती है। तो उस समय जब प्रदर्शनी लगाई थी तो उस समय क्या था, बाबा ने सब दादियों को बुलाया और वरिष्ठ भाइयों को बुलाया, जिसमें रमेश भाई, निवय भाई और दादियों में दादी प्रकाश मणि, रतमिन दादी, मनोहर दादी, इन सबको बुलाया, और अपने वरिष्ठ भाइयों को जैसे ओम प्रकाश भाई है, महेंद्र भाई है, ये तो चक्कर लगा के थोड़ा टाइम रुक के चले गए, लेकिन दादियाँ यहाँ रहती थी। मनोहर दादी लगभग 2 मास रही, तो मनोहर दादी के साथ हमको भी यहाँ आना हुआ, तो हम भी बाबा के पास 2 बार मिली हैं। 2 मास तो यहाँ मधुबन में रहते हुए मिले, और 90 उससे पहले बाबा से मिले थे, बाबा दिल्ली में आए थे, बाबा से मिले थे, और मम्मा करनाल में आई थी। तो उस समय मम्मा करनाल में आई थी, हम बहुत छोटे थे, तो मम्मा जहाँ रहती थी, हम बच्चे जैसे होते ना, खिड़की से देखेंगे, इधर से देखेंगे, उधर से देखेंगे, तो मम्मा ने मेरे को देख लिया, तो मेरे को बुलाया अंदर अंदर। अरे मैं तो डर गई, क्या करूँ, मम्मा बुला रही, क्योंकि हम खिड़की से देखते थे बार बार। तो मम्मा ने इतना प्यार किया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, और मम्मा ने कहा कि विश्व की सेवा करनी है। तो ऐसे ही हमने बाबा के पास 2 मास रहे, और मनोहर दादी के कारण, दादी तो रोज बाबा के पास जाती थी, बाबा सब दादियों को बुलाते थे, तो दादी के कारण, बड़ों के कारण कल्याण हो जाता ना, तो इसलिए हम रोज बाबा के पास दिन में 2 बार जाते थे। कभी बाबा के साथ भोजन करना, कभी बाबा का हाथ पकड़ करके सैर करना, कभी बाबा को बताना आज प्रदर्शनी में गए थे, क्या सुनाया, तो बाबा हर बात की करेक्शन करते थे। फिर अमृत वेले बाबा रोज यहाँ आंगन है ना, जहाँ दादी का ऑफिस है, उस ऑफिस के बाहर खड़े होकर के अमृत वेले योग के बाद बाबा आंगन में चक्कर लगाते थे। चक्कर लगाते हुए बाबा पहले आते थे निवय भाई के ऑफिस की सीढ़ियों पर खड़े हो जाते थे, और वहाँ खड़े होकर के सबको दृष्टि देते थे। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हुए जो हमारा ऑफिस है, आगे एक बहुत बड़ा थल्ला बना हुआ, देखा ना आपने, वो थल्ला नहीं है, वो पहाड़ी है, बाबा के टाइम पर वो पहाड़ी थी, और बाबा वहाँ खड़े होते थे और वहाँ बाबा वरदान देते, दृष्टि देते। फिर बाबा गेट पर जाते थे, बाबा कहते थे सब फरिश्ते बन के सारे विश्व में चले जाओ, अरे देश में नहीं गए तो विश्व में कहाँ जाएंगे। बाबा ने वो प्रैक्टिस कराई, जैसे बाबा कहते हैं ना कि सारे विश्व को साकाश दो, तो बाबा ने वो प्रैक्टिस कराई। जो मेरा ऑफिस है, ये बाबा के टाइम पर एक छोटा सा तिकोनी जगह, बहुत बड़ा किया हुआ है, वो एक बगीचा था छोटा सा, गमले गमले रखे थे, बाबा रोज आते थे और बाबा वहाँ से भी फूल तोड़ते थे, और वहाँ एक तिकोना सा बना हुआ था। फिर एक साइड में बाबा के टाइम पर कोर्स कराने के लिए टेबल रखी गई, और एक त्रिमूर्ति का, लक्ष्मी नारायण का बहुत लंबा सितारों वाला चित्र था, जो लोग आते थे उनको कोर्स कराते थे, तो बाबा वहाँ से फूल तोड़ते थे। और फिर क्या हुआ कि बाबा के अवेक्ट होने के बाद, बाबा तो बहुत कुछ अनुभव कराते थे, बच्चों को प्यार, कुमारियाँ बहुत सेवा कर सकती हैं। मैं उस समय यहाँ थी, कुमारियों का झुंड था, लेकिन हमारा लक्ष्य तो था ही नहीं, हमको तो था ज्ञान सुनो, मस्ती में रहो। तो बाबा ने कहा कुमारियाँ बहुत सेवा कर सकती हैं। एक दिन बाबा ने बुलाया और बोला, बच्चे तुम्हें क्या करना है? अब मेरे को तो शौक था बाबा, मैं ऑफिस में काम करूँगी। बाबा कहते, ऑफिस में काम करोगी? मैंने कहा हाँ। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, ऑफिस में काम करो, फिर तुम यहाँ आना। क्योंकि उस समय मैं थोड़ा टाइप सीख रही थी, उन दिनों तो टाइप चलता था। एक दिन बाबा ने कहा तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा बाबा मैं तो टाइप सीख रही हूँ। तो बाबा ने मेरे को बुलाया, बोला क्या करते, करके दिखाओ। मैंने किया, अब छोटी सी मशीन थी, हाथ चले या ना चले पता नहीं। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत गलती 10 की होंगी, लेकिन बाबा थोड़ी बोलेंगे गलती की है। तो कहा बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा बच्ची बच्ची सुनो, अब ये मुरली जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी, फिर विदेश में जाएगी, तुम यहाँ रहना, क्योंकि यहाँ रहना टाइप करना। अरे मैं क्यों टाइप, मैं समझूँ ना। तो बाबा ने कहा बच्ची अच्छा। मैंने कहा नहीं बाबा मैं अभी जाऊँगी। अच्छा जाओ फिर आना। फिर मैं वहाँ से गई मधुबन से, तो मेरे नौकरी मिली चंडीगढ़ में ऑफिस में ही। पहले सीनियर टाउन प्लानर ऑफिस में थी, फिर स्टेट बैंक में करती थी। लेकिन उस समय, तब तक तो बाबा व्यक्त हो चुके थे ना, उस समय रोज बाबा अमृत वेले बहुत टच करते थे, बच्ची टाइम कम है, बहुत सेवा करनी है, बहुत सेवा करनी है। तो फिर मैं नौकरी करते हुए यहाँ आई थी, क्योंकि बाबा व्यक्त हुए तो कुमारियों की ट्रेनिंग थी ना, तो फिर मैं ट्रेनिंग में आई। तो ट्रेनिंग से दादी ने मेरे को पहले कलकत्ता भेजा, लेकिन यहाँ सब क्या था कि ऑफिस में ही इसको रखो, क्योंकि मैं पहले ऑफिस में काम करती थी। तो लेकिन दीदी का विचार था कि नहीं, पहले सेंटर पर जाए, कलकत्ता रहे। कलकत्ता से फिर मैं गई पटना, पटना से फिर नेपाल, और लेकिन जब भी आती थी यहाँ ऑफिस में आती थी। फिर यहाँ बाबा के अवेक्त होने के बाद यहाँ आकर के बाबा की सेवा में प्यारी दादी ने, निवे भाई ने यहाँ ऑफिस में रखा। जब से आई हूँ तब से वहीं पर हूँ, जब से कदम रखा जहाँ थी वहीं पर हूँ। लेकिन बाबा ने भिन्न भिन्न सेवाएं कराई और भिन्न भिन्न अनुभव कराए। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा कहते हैं और दादियां कहती हैं कि जितना आपका मन क्लियर है, स्वच्छ है, तो हर कार्य सहज होता है। हम जो आए दुनिया से, दुनिया मीन्स बाहर की दुनिया लगे, वो दुनिया तो हमने देखी नहीं क्योंकि बचपन से ही ज्ञान में थे, लेकिन दादियों और बाबा का जो प्यार था, उनके साथ क्लियर कनेक्शन होने के कारण कोई भी काम करते थे वो कठिन नहीं लगता था, सहज लगता था। तो दादी को कोई भी काम होता था तो दादी कहती थी कि इस शशी बहन को दे दो, हमको सीख के थोड़ी आए थे, यहाँ आकर के सीखा, यहाँ आकर ट्रेनिंग ली, यहाँ आकर के पालना ली, यहाँ आकर के सब कुछ किया। और एक सौ बड़ा मौका तो हमें अच्छा मिलता था, हमारे भारत से जो भी वरिष्ठ भाई या बहने आते थे उनसे मिलने का मौका मिला। ओम प्रकाश भाई आते थे हमारे पास, बहुत टाइम बैठते थे, बहुत अच्छी अच्छी रमणीक बातें सुनाते थे। ओम प्रकाश भाई आते थे, महेंद्र भाई आते थे, चंडीगढ़ से अमित चंद भाई आते थे, सारे आते थे, सारी दादियां आती थी। तो सबके साथ रहने का मौका तो क्या, सब कुछ सीखने को मिला। बड़ों के साथ रहना ऐसा नहीं होता है, बड़ों को सामने भी आना, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो दादियों से भी बहुत कुछ सीखा। तो दादी तो बहुत क्लियर माइंड्स की थी, हर बात में क्लियर। कभी कभी हम जा रहे होते थे तो मैं उधर से घूम के दादी के पास चले जाती थी, दादी कहती इधर आओ, तुम मेरे संकल्प से आई हो या पे आई हो? मैंने कहा दादी मैं उधर जा रही थी, फिर मेरे को पता नहीं क्या वो इधर आ गई। तो दादी कहती देखा मेरा संकल्प तुमको खींच के लाया। फिर बड़ी दीदी मनमोहिनी थी ना, वो बहुत ध्यान रखती थी, वो ऐसा ध्यान रखती थी कि ज्ञान के अंदर कैसे एक्यूरेसी आए। तो वो क्या था, उन दिनों जब नए नए आए, कोई मुरली तो हमको हाथ में मिलती नहीं थी, अच्छा मुरली हाथ जो सुना है वही पक्का करना है, चाहे नोट्स लो। तो सुबह के टाइम 8 से 10 बजे के बीच में, 8:30 से 10 बजे के बीच में हाथ से पत्र लिखे जाते थे, जिसमें दादी प्रकाशमणि अलग से जवाब देती थी, दीदी मनमोहिनी अलग से जवाब देती थी, और हाथ से लिखते थे। अच्छा जब पत्र लिखने जाओ उसके बाद दीदी वहाँ बिठा देगी और कहेगी आज जो मुरली सुनी वो पहले बताओ, पॉइंट सुनाओ। अरे डरते हमको क्या मालूम, या थोड़ी होगी या तो नोट करो। तो हम क्या करते थे, चलाकी कर लेते थे। क्या चलाकी करते, दीदी के जाने से पहले 4-5 पॉइंट पक्की रट के जाना, पक्का करके जाना। दीदी पूछेगी फेल ना करे, नहीं तो कहेगी तुम फेल, ऐसे बोलते थे। तो दीदी को हम सुनाते थे। तो हमने देखा दादियों ने जो सिखाया, आज हम मुरली पढ़ते हैं या सुनते हैं, एक एक पॉइंट दिल में जाती। अभी तो हर एक के हाथ में मुरली है, मोबाइल में मुरली पॉइंट पूछेंगे, मोबाइल खोलेंगे, कहेंगे ये पॉइंट से, अरे क्या है पॉइंट, मोबाइल में पढ़ के सुनाता हूँ। हमारे टाइम तो कुछ नहीं था, मुरली भी नहीं मिलती थी, वो तो बस एक ही मुरली होती थी। तो वो आज हम देखते हैं। फिर दीदी क्या करती थी, रोज शाम को रात को उनके पास जाना है, और रात को जब हम जाते थे ना, तो दीदी क्या है पहले पूछेगी आज सारा दिन क्या किया। तो हम तो सीधे साधे, दीदी आज सुबह से मैंने ये काम किया, आज ये किया, शाम को ये किया, कल सवेरे ये करना। कहती है तुम सारा दिन काम करती है, बाबा को याद कब किया। मैंने कहा दीदी किया ना। कहती इधर बैठो बैठो, दीदी बहुत प्यार से जैसे बच्चों को कहते ना बैठो बैठो, मेरे को कहती बैठो। तो मैं जैसे बैठी, कहती सुनो क्या करना है तुमको, जो सारा दिन आज काम किया उसको रात को सोने के टाइम बिंदी, फुल स्टॉप, ड्रामा। कल की बात कल, क्यों, कल जब उठोगी कोई काम दूसरा इम्पोर्टेंट आ गया और फिर कहोगी नहीं नहीं मेरे को तो कल का काम पहले करना है, टेंशन हो जाएगा ना कि कल का पूरा नहीं हो, अभी दूसरा काम करो, कि दो दो कैसे करेंगे। तो बोला जो ड्रामा में पहला सेवा आए उस सेवा को तुम करो। तो इससे क्या हुआ, हल्कापन, सेवा भी करो, हल्के भी रहो, खुश भी रहो। आज भी बाबा ने क्या कहा, बच्चे भारी रहते हैं ना, भारी रहते ना, तो बाबा ने क्या कहा, हल्के रहो। हल्के क्या बाबा ने बताया कि देखो हल्की चीज पानी पे डालोगे कभी नहीं डूबेगी, तैरेगी, ऊपर को जाएगी, हल्की उड़ेगी। इसलिए बाबा भी बच्चों को क्या कहते हैं कि हल्के रहो, ठीक है, सब कुछ हल्के हैं, भारी तो नहीं है कोई, जो भी भारी हो बाबा को पत्र लिख के स्वाहा, है ना, सब कुछ खत्म है, ऐसा करना है। तो आज आप सबको बाबा के घर से याद सौगात मिलेगी, और याद सौगात बाबा के टाइम से देते थे, बाबा के पास आते थे ना, बाबा सभी बच्चों को देते थे, और बाबा कहते थे बाबा के घर से मिलेगा तो बाबा याद रहेगा, बाबा का घर याद रहेगा। फिर बाबा प्यार से, हाँ बोलो है, अच्छा आप कहाँ से हैं वैसे, हैं इंदौर से। ऐसा है, बाबा ने शुरू में बताया था कि जब यज्ञ स्थापन हुआ हैदराबाद सिंध में, उस समय ज्ञान कम था, पता है, सब के सब संदेश में चले जाते, कईयों को साक्षात्कार, कोई कृष्ण को देख रहा, यही कारण था ना, तो लोग उसको जादू समझते थे। फिर जब ये विद्यालय भारत में शिफ्ट हुआ तो उस समय दादियों को बाबा ने भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजा, दिल्ली भेजा। तो ये योगी इतनी तपस्वी की दादियां थी, तो ये दादियां जैसे बैठती थी तो वो क्या ज्ञान कम सुनाते, बस आत्मा है, बाबा के बच्चे, ऐसे थोड़ा सा। तो उस समय क्या होता था, क्लास में 80-70% तो सब ध्यान में बैठे, नहीं आधी क्लास में कुछ होते थे जो ट्रांस में चले जाते थे, और आधी क्लास ऐसी होती थी वो सेमी ट्रांस में, जैसे एंजल बैठे हैं, अव्यक्त स्टेज में बैठे, ऐसे क्लास में होता था, तो वो ध्यान में चले जाते थे। तो भारत में भी यही हुआ ना, शुरू में कहते ब्रह्मा कुमारी के बाद मर जाना, जादू लगता ऐसे बोलते थे ना शुरू में, अभी तो नहीं मानते, तो अभी तो आना चाहते हैं। तो उस समय क्या हुआ, जब हम ज्ञान में आए तो पहला दिन में जाकर के बैठी, मुझे को हमारी माता जी आए, हम सारे के सारे घर आके बैठे, उसमें कोई ज्ञान हमने आज तक कोर्स किया ही नहीं है। मैं बता दूं कोर्स क्या होता हमको पता ही नहीं है। हम आ गए, चल पड़े, चलते जा रहे हैं, हमने ना ज्ञान ज्यादा सुना। तो मैं जैसे ही पहले दिन जाके बैठी ना वहां पर, तो मेरे को बिंदी का साक्षात्कार हुआ। वो बिंदी बहुत बड़ी लाइट होती जा रही, लाइट, और मैं आंखों में आंसू आते जा रहे हैं। उस समय क्लास में क्या होता था, एक्सपीरियंस शेयर करते, ज्ञान कम, एक्सपीरियंस, और बाबा के साथ के अनुभव, दादियों के अनुभव सुनते थे। तो वो जो बहन योग करा रही थी तो मेरे को बुलाया, वो मेरे को पूछे क्या देखा। अरे क्या देखा, मैं क्या बताऊं। तो मैं तो और ही जोर से रोने लगी। उसने सोचा कि ये तो कोई भयानक सीन देखा है इसने। तो ऐसे ही मैं कुछ नहीं, फिर मैं तो योग की मस्ती में रहने लगी। फिर एक दिन देखा कि गंगा के किनारे ना, यमुना के किनारे बहुत सुंदर बगीचा है। उस बगीचे में श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपियां सब रास कर रहे हैं। तो मैं दूर से देख रही थी, धीरे धीरे वो कृष्ण नजदीक आता है, मेरे को बोलता इधर आओ, इधर नजदीक। मैं तो डर गई, मैं क्या करूंगी वहां जाके। तो वो भी जैसे, क्योंकि अपने को तो नहीं था, बचपन छोटे, डांस करना इतना नहीं आता था। फिर उसके बाद बैठती थी, कभी मधुबन देखा, कभी ये पहाड़ियां देखी, पहाड़ियों के बीच में क्रॉस करती जा, ऐसे आते जाते थे। फिर तो बाद में मैं नौकरी में चली गई। फिर नौकरी में सुबह के सेंटर पर रहती थी चंडीगढ़, तो सुबह के टाइम योग में जैसे बैठते थे, बाबा बहुत कुछ अनुभव भी कराते थे। बाबा कहते थे कि टाइम कम है, बहुत सेवा करनी है। फिर तो नौकरी छोड़ के मैं आ गई, तो उस समय सिस्टम था मधुबन के अंदर, बाबा ने अभी तो सिस्टम कम कर दिया है, उस समय सिस्टम था कि बाबा को भोग लगाते थे जो भी ट्रांस मैसेंजर बहुत थे, हमारी दादियां कई थी, कोई संदेशी दादी बहुत सारे थे। तो उस समय फिर एक दिन क्या हुआ कि सभी संदेशी ट्रांस मैसेंजर कोई बाहर गए हुए थे। फिर दीदी मनमोहिनी को मालूम था कि मैं बाबा के पास जाती हूँ, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला आज तुमको भोग लगाना। मैं बोला दीदी मैं नहीं लगाऊंगी भोग, क्योंकि छोटे बच्चे होते ना जैसे, कहा नहीं नहीं तुमको लगाना। फिर लगाना शुरू किया। तब तक तो सब संदेशियां थी, बहुत सी मोहिनी बहन, मधुबन की मोहिनी बहन, ये सब लगाते थे। फिर बीच बीच में मैं लगाती थी, फिर उसके बाद से फिर लगाते चले आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में आपको सुनाया। तो अभी आपको बाबा के घर से याद सौगात मिलेगी। देखो बाबा पहले देते थे, फिर उसके बाद हमारी दादी ने वही सिस्टम रखा, और शांतिवन में भी वही सिस्टम है, कितने भी आए, हजारों आए, सबको सौगात मिलेगी। तो यहाँ जो सौगात आज हम आपको देंगे, वैसे ये सौगात किसी को देना नहीं, आप ये है भट्टी की सौगात। क्यों, ये जब रखेंगे, जब प्रोग्राम में जाते हैं, रायपुर जाते हैं, मधुबन आते हैं, रास्ते में इसको यूज करो, ठीक है ना। तो आप क्या इसको जब यूज करो तो आपको मधुबन भट्टी याद है, बाकी याद हो और वो बांटना, इसको नहीं देना, ये अपने पास ही रखना। कुछ भी यूज करो, कभी भी ओढ़ो, कभी भी रखो, कहाँ भी करो, वो है। और ये सौगात मिलेगी बैठे। अच्छा, ये है कला टोली। बाबा जो है ना, सबको कला कंद खिलाते थे, और बाबा कहते थे मुंह खोलो, देखो किसके पास आता, डालो, खोलो मुंह, देखो मैं ही खा लेते। बाबा ऐसे करते थे बच्चों से, बहुत खेल करते थे, बहुत खेल करते थे। बाबा बच्चों को कहते तो ज्ञान कोई सूखा थोड़ी है, खुश रहो, आराम से चलो, मर्यादा को मिस नहीं करो, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करो, बाकी खेलो और सब। आओ बहन इधर आओ, टोली बांट, आओ बहन, क्या नाम है, इधर बैठो, बैठो। तो बाबा ऐसे कहते थे, तो बाबा बच्चों को देते थे। अच्छा एक बात और सुनाती हूँ, बाबा ने एक, बैठो आप बैठो ना एकदम, बाबा ने एक बार क्या कहा कि बाबा टोली दे रहे हैं, जिस बच्चे ने बाबा को याद किए बिना टोली खाई है, वो हाथ खड़ो, हाथ खड़ा करो, बाबा डबल टोली देंगे। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, बाबा ने उसको बुलाया, इधर आओ, खड़े हो जाओ। अच्छा क्या भूल किया, क्या भूल किया, कि बाबा बिना याद किए खाया, बाबा ने कहा भूल किया ना। अच्छा अभी तो दे रहे हैं, फिर दोबारा नहीं करना। फिर एक बार फिर दीदी मनमोहिनी ने भी यही किया, तो दीदी ने कहा जिसने भूल किया हो उसको दीदी डबल टोली देंगे। तो एक दो आ गई, दीदी ने दिया, बोला पक्का फिर दोबारा ऐसा नहीं करना। फिर दूसरी बार दीदी ने कहा कि अच्छा जिसने भूल किया उसको डबल ट्रिपल टोली मिलेगी। 20-25 ने हाथ खड़ा कर दिया। तो दीदी ने कहा सब आ जाओ इधर आ जाओ, सबको बोला खड़े हो जाओ, कान पकड़ो कान पकड़ो, जब तक मैं नहीं कहूँ कि कान पकड़ना बंद करो तब तक कान पकड़ो। उनको टोली भी नहीं खिलाई। तो बहुत मजे करते थे दीदी के साथ, दादी के साथ, एक एक बात सुनते जाओ, इतिहास खत्म होने वाला नहीं है। तो दीदी ने उनको टोली भी नहीं दी, उनको अच्छी तरह से कान पकड़वाए, बोले खड़े रहो अभी तुम, बाबा को कहो बाबा अब हम आगे से ऐसे नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये टोली भी बाबा के प्यार की है। तो अभी हम आपको सौगात देंगे।